क्लास को हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे और सभी को जीवन में उपयोगी हो ऐसी कुछ बातें भी आपके सामने रखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा परिचय ले लेता हूं। 15 साल से कम आयु वाले बच्चे जो बैठे हैं हाथ उठाएंगे? 15 साल से कम नहीं, बड़े नहीं, 15 साल से कम आयु वाले। अच्छा ठीक है, थोड़े युवा वर्ग 30-35 साल तक, ठीक है। कलाकार, किसी भी फील्ड में कलाकार, ठीक है। टॉपिक बहुत सुंदर है और जैसे मैंने कहा, मैं आप सभी के सामने इस टॉपिक के साथ साथ ऐसी कुछ चीजें भी रखना चाहता हूं कि आपका जीवन भी अध्यात्म से भरपूर हो और अध्यात्म की शक्ति को आप पहचान कर उसका अपने जीवन में फायदा उठाएं। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि मैं एक टॉपिक पर केवल लेक्चर करके चला जाऊं, आप कहें वाह वाह, इतना नहीं। आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिले तो पहली चीज, एक सुंदर बात सभी अपनी बुद्धि में समा लें, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। सुना सभी ने? मैं रिपीट करा दूं, जीवन में बोलो हारता वही मनुष्य है, आगे बोलो, जो भूल जाता है। बहुत सुंदर बात है ये। आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में, भौतिकता की चकाचौंध में, मनुष्य अपने को और अपनी शक्तियों को भूलता जा रहा है। उसे बाहरी दुनिया बहुत दिखाई दे रही है, अपनी आंतरिक शक्तियों का आभास कम से कम होता जा रहा है। आज हम आपको आपसे मिलाना चाहेंगे, आपके पास जो शक्तियां हैं उनका आपको पता हो और उनका आप जीवन में सदुपयोग करके जीवन को सुखी कर सकें। जैसे देखो, इलेक्ट्रिकल पावर हम सबके घरों में रहती है, हम उसका यूज करते हैं ना। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है बाहर, तो हम अपने पास एसी लगा लेते हैं। बहुत अच्छा मैसेज न्यूज लेकर आए दादी जान की, जो चीफ ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो 12:15 तक आएंगी तो सभी बैठे ही रहेंगे, बैठे तो अब रहेंगे ही आप, और जो बाहर भी घूम रहे हों और आवाज सुन रहे हों वो भी आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा, दादी जी स्पिरिचुअल पावर का चलता फिरता एग्जाम्पल है। आयु 95 ईयर्स है लेकिन आप उनके बोल की पावर देखेंगे, यंग व्यक्ति जैसी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है और कराया है संसार को। तो हम सभी अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखिए कल सवेरे आप में से बहुतों ने क्लास अटेंड किया होगा, बताया है हम कौन हैं। बताएंगे कौन हैं हम? वाह, अब तो होशियार स्टूडेंट बन गए सभी, वेरी गुड। आत्मा पुनर्जन्म लेती है ना, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। हम आगे की ओर तो सोचते हैं कि ये शरीर छोड़कर हम नया लेंगे, जरा पीछे की ओर चलें, इस शरीर से पहले हम किसी और शरीर में थे, उससे पहले किसी और शरीर में, उससे पहले किसी और शरीर में। सोचना है अब सभी को, सबसे पहले कैसे हो रहे होंगे हम? आप में से कईयों को थोड़ा थोड़ा पता होगा, सबसे पहले जब इस संसार की शुरुआत होती है, सतयुग की बिगनिंग, उस टाइम भी तो हम थे ना यहां, हम सभी देवी देवता थे। आप सब जो यहां बैठे हैं सब सतयुग में देवी देवता थे। ये बात केवल भगवान ही जानते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं उन्होंने ही बताई है। जिन देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो, सोचे हम सब भारत वाले यहां बैठे हैं, हम जब मंदिरों में जाते हैं देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं तो हमारे मन में क्या क्या होता है, सोचें आप। कभी आपने सोचा नहीं होगा, एक मोटी बात तो देवताओं के लिए हमारे मन में सम्मान और श्रद्धा है, ये तो कॉमन बात है, लेकिन प्यार भी बहुत है या नहीं है? प्यार बहुत है। प्यार क्यों है? देखो, प्यार हमेशा अपनों से ही होता है, कभी परायों से कोई प्यार नहीं करता। तो देवताओं के और हमारे बीच में नाता है तब तो हम उन्हें सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, प्यार महसूस करते हैं, उनसे प्यार लेते हैं। तो देवता हमारे पूर्वज हैं, हम सब देवताओं के वंशज हैं, हमारी संस्कृति देव संस्कृति है, सभी जान ले इस चीज को। अब जो हमारी संस्कृति हम देख रहे हैं पिछले 25 साल से, उससे पहले 25 साल से, उससे पहले 100 साल से, संस्कृति में बहुत जबरदस्त गिरावट आती गई। हमारी संस्कृति वास्तव में देव संस्कृति है, जो अध्यात्म पर आधारित है। अध्यात्म क्या है? प्रेम, शांति, सम्मान, निस्वार्थ भावना, आत्मिक शक्ति, प्योरिटी, ये अध्यात्म है। इस शब्द से आप ज्यादा भारी ना सोचें कि अध्यात्म पता नहीं क्या होता है, ये क्या नई बात यहां सिखाए जा रहे हैं। आपस में प्रेम पैदा कराना, हमारी वर्तमान संस्कृति जो स्वार्थ पर आधारित हो गई है ना, स्वार्थ पे। आप घर घर में देख लो, संबंधों में भी निस्वार्थ प्यार नहीं रहा। हमारी जो संस्कृति स्वार्थ पर आधारित हो गई, इसे पुनः निस्वार्थ पर लाना, परिवारों में सुख और शांति की स्थापना करना, अपनापन पैदा करना। देखिए, मैं भारतीय संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण देता हूं आपको, आप उस चीज से भली भांति परिचित हैं पर वो घटना आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। हमारी संस्कृति कलयुग में भी कितनी महान रही है, इसका एक जी का जागता एग्जाम्पल, आप शिवाजी का नाम सब जानते हैं, जानते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री के हीरो हैं शिवाजी। एक बार उसके सेनापति का किसी मुस्लिम सेनापति से युद्ध हो रहा था, इसके सेनापति ने उसको हरा दिया और उसकी बेगम को अरेस्ट करके ले आया और सोचा कि शिवाजी महाराज को ये सुंदर भेंट अर्पित करूंगा, महाराज बहुत प्रसन्न होंगे मुझसे। ले आया पालकी में, वो आई, वो डरी हुई थी बहुत ज्यादा, उसने कहा आपके लिए एक बहुत सुंदर भेंट लाया हूं आज। वो लाया, वो शिवाजी महाराज सोचने लगे ये पालकी क्या, खोला, वो डरी हुई बेगम बाहर निकली। उसको देखते ही शिवाजी महाराज ने सेनापति को वार्निंग दी कि इसको जैसे लाए हो ये मेरी मां है, इसको वैसे ही वापस वहीं तुम छोड़ कर आओ, और आज के बाद यदि ऐसा कुकृत्य फिर से किया तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। देखिए, ये कलयुग में भी हमारी पवित्र महान संस्कृति का सुंदर उदाहरण है या नहीं? बहुत सुंदर उदाहरण है। यही बात अगर दूसरे शासकों के साथ होती, उन्हें आप जानते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो वो खुश हो जाते, सेनापति को अवार्ड दिया जाता बहुत ज्यादा। यही कहानी महाराणा प्रताप के साथ भी है। उसका लड़का युद्ध हो रहा था, उसकी बेगम को ले आया अरेस्ट करके, शाहजहां के अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर के साथ युद्ध हो रहा था, उसके सेनापति को हराकर उसकी बेगम को ले आए। यही बात महाराणा प्रताप ने की थी। अपने लड़के अमर सिंह को कहा, तुम ही जाओ और इसको सम्मान सहित वापिस इसके घर तक छोड़कर आओ। इसका प्रभाव मुस्लिम सत्ता पर बहुत सुंदर हुआ था। वो भारतीय राजाओं की मानता के आगे मन ही मन झुकने लगे थे। तो हमारी महान संस्कृति पवित्रता पर आधारित है। हमारी महान संस्कृति शरणागति को, शरण देने पर आधारित है। हमारी भारतीय संस्कृति एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ाने पर आधारित है। आपको मालूम हो, अब मैं आपको उसी भाषा में बात करूंगा, जब हम सब देवता थे, ठीक है ना? कौन कौन बैठे यहां जो देवता थे, जरा हाथ उठा देना। नहीं, हाथ उठाओ, मैं देख तो लूं, दर्शन देवताओं के मुझे भी हो जाएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आपको फिर से देवता बनना है। अपनी संस्कृति पर ध्यान दो। जब हम सब देवता थे तो ये विश्व एक परिवार होता था। परिवार, यहां भेदभाव था ही नहीं। ये भेदभाव की संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसी महान संस्कृति जहां सभी एक दूसरे की पालना करते थे, जहां सभी एक दूसरे का अपना समझकर ध्यान रखते थे, जहां सभी एक दूसरे को आगे बढ़ाते थे, पवित्रता और आध्यात्म की ये शक्ति है। जहां दूसरों को आगे बढ़ता देखकर हम बहुत प्रसन्न होते थे। आज क्या होता है, दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो नींद ही खत्म हो जाती है कि क्या करें, ये तो बहुत आगे बढ़ गया। आप सभी में जो कलाकार आए हैं, कलाकार का एक शब्द विच्छेद करके एक बात शायद आपने सुनी हो, नहीं तो सुन लें, कल को आकार देने वाले। ऐसे कलाकार आपको बनना है। हमारा कल बहुत सुंदर हो जाए, उसको आकार देंगे कलाकार। कल ने हमारे आज के का आकार दिया है ना, यस्टरडे ने, बीते हुए कल ने हमारे वर्तमान का निर्माण किया है, और हमारा आज हमारे फ्यूचर का निर्माण करेगा। तो आप सभी अपनी कलाओं में ऐसी आध्यात्मिक चमक लाएं कि आपकी कला लोगों को महान बनाने की प्रेरणा दे। मैं कभी कभी सोचा करता हूं, मेरे पास कोई बहुत अच्छे सिंगर आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि तानसेन का नाम तो आप सबने सुना है, प्रसिद्ध है कि तानसेन जब गीत गाते थे, दीप राग गाते थे, तो दीपक जल उठते थे। गीत गाते थे, बरसात होने लगती थी। सुनी है ना ये बात? क्या था उनके पास? कला तो थी, लेकिन उनके अंदर एक पावर भी थी कि वो बारिश का आह्वान कर सके अपने शब्दों से, वो दीपक जला सके अपने शब्दों से, और यही पावर आध्यात्मिक पावर कहलाती है, आत्मा की शक्ति कहलाती है। फिर से चलूं मैं एक सुंदर बात पर जो आप सभी के बहुत काम आएगी। माताएं जो बैठी हैं और उनके साथ जो बच्चे आए हैं और आपके घरों में जो बच्चे हैं, पहले मैं बच्चों से शुरू करूंगा। आप क्या सिखाओ अपने बच्चों को, हर घर में बच्चे होते ही हैं, ताकि आपके बच्चे अब भी अच्छे हों और बड़े होकर महान बने, देश के काम आए, चाहे बड़े कलाकार बने, चाहे किसी भी फील्ड में हों, बहुत उन्नति करें। तो देखिए, हम बात कर रहे थे हम कौन हैं, बोलो मुख से कौन है। आत्मा में तीन शक्तियां हैं, कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। अब ध्यान से सुन लेंगे, शक्ति का निवास मन में होता है। शक्ति कहां रहती है? मन में। और विवेक, विजडम, ज्ञान, इसका निवास बुद्धि में होता है। ये दो चीजें हैं हमारे पास, संस्कार तो बनते हैं, मन और बुद्धि दो चीजें सबके पास हैं जिससे जीवन की गाड़ी चलती है। ये जीवन एक सुंदर गाड़ी है, हम इसमें यात्रा पर चल रहे हैं। अब क्या हुआ है कि बुद्धि का तो मनुष्य ने बहुत विकास किया है, हर फील्ड में बुद्धि के लिए कोर्सेज बहुत हैं, पर मन का विकास नहीं किया। मन टूट गया जैसे टूटा पहिया, और बुद्धि का पहिया बहुत मजबूत, इसलिए जीवन की गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है। मैं देखता हूं बहुत सारे कलाकार कहीं ना कहीं निराश, कहीं ना कहीं दूसरों के व्यवहार से निराश, प्रोत्साहन नहीं, कहीं कहीं अपनी असफलता को देखकर निराश, कहीं कहीं कंपटीशन को देखकर निराश। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आज आप सीख लें आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति कहां रहती है? मन में। ध्यान देंगे, जो हम कहते हैं ना शक्ति, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, उसका माइंड शक्तिशाली है। शरीर चाहे भले ही थोड़ा ढीला भी हो, लेकिन शक्ति का वास्तविक निवास मन में है। अब देखिए, मन को मनोवैज्ञानिकों ने कई रूप दिए हैं, मैं दो रूपों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, और आप अपनी शक्तियों को अच्छी तरह पहचान लेंगे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी में बिल्कुल सीधी हिंदी, बाह्य मन और अंतर मन। मन की 90% शक्ति अंतर मन में रहती है। बहुत ध्यान से सुन लेंगे, दो मिनट की बात आपके जीवन की धारा को बदल सकती है। आप अपनी समस्याओं को हंसते हंसते पार कर सकते हैं। 90% शक्ति रहती है अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। जब हमारा मन शांत होता है, बस ये बात ध्यान देंगे, जब हमारा मन शांत होता है तो अंतर मन जागृत रहता है। अगर हमारा मन जागृत है, यानी हम सोच रहे हैं मन में बहुत कुछ, तो अंतर मन सोया है। हमारा मन शांत हो गया तो अंतर मन जग गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत। और अंतर मन में शक्ति बहुत है। अंतर मन जिन संकल्पों को स्वीकार कर ले, ध्यान देंगे, स्वीकार कर ले, उसको करने की संपूर्ण शक्ति उसमें है। अब मैं आपको छोटे से उदाहरण दूंगा और आप बिल्कुल अच्छी तरह जान जाएंगे इसका प्रयोग। दो समय हमारे दिन में ऐसे हैं जब हमारा मन शांत होता है, बताओ कौन से हैं वो दो समय? एक तब जब रात को हमें नींद आ रही हो, और एक तब जब हम सवेरे उठते हैं, और उठने के बाद भी 10 मिनट तक हमारा मन शांत रहता है। अब अटेंशन देंगे आप सभी, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। रात को हमारे अंतर मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रोगों को ठीक करने की अधिकतम शक्ति रहती है। रिपीट करूंगा, ध्यान से सुने, आपके काम आएगी ये बात। रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रोगों को ठीक करने की अधिकतम शक्ति रहती है। आप अपने अनेक रोगों को इस विधि से ठीक कर सकते हैं, आप सिखा भी सकते हैं कि जब रात को नींद आ रही हो, पता चलता है ना भाई नींद आ रही है, अब सोना है, तब वो संकल्प दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। मान लो आपको डायबिटीज है, शुगर है, आप रात को अपने अंतर मन को संकल्प दो, मैं डायबिटीज से मुक्त हूं, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं हाई ब्लड प्रेशर से मुक्त हूं, मैं कैंसर से मुक्त हूं। सात बार कर दो, जिस रोग को भी आपको ठीक करना है, सात बार संकल्प करो मैं उस रोग से मुक्त हूं। सबकॉन्शियस माइंड उस संकल्प को स्वीकार कर लेगा और सारी रात उस रोग को ठीक करने का काम करेगा। ये बहुत सुंदर टेक्निक है रोगों को ठीक करने की। मैंने इसके द्वारा बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, एक माता का अनुभव बहुत सुंदर है, उसकी आवाज ही चली गई थी, बोलना बंद हो गया था, 10 दिन में आवाज वापस लौट गई बिना खर्च किए, एक दो प्रयोग से। डिप्रेशन के जिनको रात को नींद नहीं आती, ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे, तीन तीन दिन में, पांच पांच दिन में, सात सात दिन में सदा के लिए ठीक हो गए। कल ही मेरे को एक फोन आया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सुंदर न्यूज मिला। राजकोट का एक कोई व्यक्ति, अब तक मैं देखा नहीं कौन है, फोन से ही बात हुई 4 मास पहले, मुझे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। मैंने उसे ऐसी विधि बता दी 2-3, उसने शुरू किया, तो कल फोन आया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं तुम्हें डिप्रेशन के 3 अटैक आ चुके हैं, अब जीवन भर तुम्हें गोली खानी चाहिए। मैंने उससे पूछा कितने दिन से बिल्कुल ठीक हो, 15 दिन से बिल्कुल ठीक हूं। तो मैंने उसे कहा 15 दिन और देखो, अगर तुम इस विधि से ही ठीक रहते हो तो तुम्हें डिप्रेशन की कोई गोली खाने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल खुश था, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। इतना डिप्रेशन था कि सारा दिन सोया ही रहता था, परिवार भी बेचारा बिखर गया था, सब उसके पत्नी और माँ बाप को चिंता थी इसका भविष्य क्या होगा। इतना अच्छा हो गया कि मुझे भी उसकी कल्पना नहीं थी। तो हमारे पास, इसको ही कहते हैं स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्म की शक्ति, ये बहुत ज्यादा है। तो रात को सोने से पहले आप ये प्रयोग करना, सवेरे उठने पर। अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात है सवेरे की, जब हम सवेरे आंख खोलते हैं, आप ध्यान देंगे, बहुत देर से उठने वालों को ये काम नहीं करेगा, जल्दी उठने वालों को ये प्रयोग काम करेगा। आप सोचे हम तो सो के 10 बजे उठेंगे, 10 बजे क्या होता है, 10 बजे देखो क्या होता है, पता है ना यहां 10 बजे क्या होता है दुनिया में। मैं कभी कभी हंसा करता हूं, सवेरे हम कहीं गाड़ी से जाते हैं ना, तो रास्ते में गधे भी मिलते हैं, कुत्ते भी मिलते हैं, हम अपने साथियों को कहा करते हैं देखो गधे भी सवेरे उठते हैं, 5 बजे ही उठ जाते हैं, कुत्ते तो 4 बजे से ही उठ जाते हैं। तो मनुष्यों को भी थोड़ा जल्दी उठना चाहिए ना, वो तो बहुत पीछे की रचनाएं हैं। तो अगर थोड़ा जल्दी उठा जाए, मतलब 6 बजे तक, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बात बहुत सुंदर काम करेगी। जब आप आंख खोलें, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, आपको विश्वास हो जाए कि हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। हम किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा परम पिता है। जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स विचार करो, भगवान हमारा परम पिता है, इसका अर्थ है वो हमारा है ना, हमारा, वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वशक्तिवान हमारा है तो उसकी शक्तियां भी हमारी हैं। बाप का सब कुछ उनके बच्चों का होता है ना, तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां भी हमारी हैं, इसलिए हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। आप केवल ये याद कर लिया करो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, इसलिए मैं शक्तिशाली हूं। रोज आप याद करेंगे तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं, मैं वही नाम आपको सुना देता हूं। भगवान है सर्वशक्तिवान और हम उसके बच्चे, जिसके पास उसकी शक्तियां हैं वे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन है? आप इस चीज को स्वीकार कर लो बस, कि हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। और पहली लाइन जो मैंने बोली थी कि जीवन में हारता वही मनुष्य है जो बोलो जो, हमें आपको इसलिए बुलवा रहा कि आप कभी ना भूलना इसे। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। रोज सवेरे उठकर पहले तो अटेंशन देंगे कि हम उठते ही अखबार नहीं पढ़ेंगे। जिसको भी आदत हो उठे और टेबल पर अखबार पड़ा है उठते ही अखबार देखा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अखबार में जो भी खराब बातें छपी होंगी आपने उठते ही पढ़ लिया, पाकिस्तान में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, 50 लोग मारे गए, तो क्या जाएगा अंदर? शांति या अशांति? सूक्ष्म रूप से अशांति को हम अपने अंदर भेज रहे हैं। फिर हम कहते हैं बहुत टेंशन है, बहुत अशांति है जीवन में, क्योंकि सवेरे ही हम बीज डाल देते हैं अशांति के। उठते ही नहीं, आधा घंटा बाद पढ़ो, क्योंकि उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर्मन जगा हुआ है। उस टाइम सावधानी पूर्वक आप कुछ विचार अपने को दें। क्या विचार दें? अब सुन लें। पहला विचार देना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसके साथ दूसरा विचार दे देना, अटेंशन देंगे, मैं जीवन की सभी समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। बहुत काम आएगा आपको ये संकल्प, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और समस्याएं आपको खेल लगने लगेंगी। आप 7 दिन देकर देखना ये संकल्प। ऐसे में कई संकल्प आपको सुना रहा हूं, जो लिख रहे हैं वो लिख लें, बाकी याद करें इसको। सवेरे उठते ही अपने को संकल्प देना, मेरा जीवन तनाव से मुक्त हो गया है। 7 बार भले ही दे देना, मैं तनाव मुक्त हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मेरा चित्त शांत हो गया है। सारा दिन आपको शांति बनी रहेगी, मेरा चित्त शांत हो गया है। सवेरे उठते ही, उठते ही भूल जाए तो पहले 10 मिनट में सबको याद रखना है, चित्त शांत, मन शांत, तो बुद्धि की शक्ति संपूर्ण रूप से काम करती है। आपके निर्णय परफेक्ट होंगे, आपकी बुद्धि बहुत सॉलिड रहेगी। अगर बच्चे भी ये बात सीख लें तो उनको पढ़ाई बहुत इजी हो जाएगी। जो युवक बैठे हैं वो बहुत अच्छी तरह सीख लें, उठते ही वो 3 संकल्प किया करें, मैं बुद्धिमान हूं। ये बहुत सुंदर संकल्प है, बुद्धि खुलने लगेगी। मैं बुद्धिमान हूं, मैं चरित्रवान हूं, मैं एकाग्र चित्त हूं। सभी कलाकारों को एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। ये संकल्प आप दें, मैं एकाग्र चित्त हूं। छोटे बच्चों को सिखा दें माताएं, तीन साल के बच्चे से बड़े को यदि आप सिखाने लगे घर में तो उनकी बुद्धि का विकास होगा, वो बड़े होकर बहुत चरित्रवान होंगे। चौथा संकल्प भी देंगे, सभी युवक सुन लें, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विद गुड फीलिंग्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप संकल्प देना अपने को, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता आपके पीछे पीछे चलने लगेगी। तो जैसा आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं वैसे ही विचार आप रोज सवेरे अपने को देंगे। इसलिए रोज सवेरे के पहले 15 मिनट आपको अपने को चार्ज करना है। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं और लैपटॉप चार्ज करते हैं और बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, इंस्ट्रूमेंट भी होंगे जिन्हें आप चार्ज कर देंगे। हम अपने को भी चार्ज करें, और स्वयं को चार्ज करने की विधि है सुंदर विचार। मन जितना अच्छा रहेगा आपकी कलाएं उतनी जल्दी विकसित होंगी। जो सीखने में आपको 6 मास लगते हैं वो आप 1 मास में भी एक्सपर्ट हो सकेंगे अगर मन एकाग्र हो। तो ये हमारे पास जो शक्तियां हैं उसका हम सदुपयोग करेंगे इस तरह। तो हमारी संस्कृति, फिर से आ जाए वहीं, देव संस्कृति है। हम देवों की संतान हैं, हम बहुत समय देवता रहे। सबको ये बात मालूम होनी चाहिए, हम 2500 साल सतयुग और त्रेता युग में देव संस्कृति में थे, जहां संपूर्ण सुख शांति थी या आपकी कलाएं संपूर्ण रूप से विकसित थी। वहां उनके बीज हमारे अंदर अभी भी विद्यमान हैं। जो कुछ हमने किसी भी जन्म में किया है उसका बीज हमारे वर्तमान में भी उपस्थित रहता है, उसको आप विकसित कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां सोई हुई रहती हैं, हम उन्हें जगा सकते हैं। ये जो यहाँ आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूँ कि सवेरे उठते ही आप ऐसा ऐसा चिंतन करें, ये बातें सोई हुई योग्यताओं को, टैलेंट्स को जगाती हैं। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। मैं आप सभी को एक बात और कहूंगा, सभी इस कंपटीशन के युग में निराशा से पूरी तरह बचेंगे, क्योंकि किसी भी फील्ड में आजकल युवा वर्ग के सामने विशेष रूप से कई चैलेंजेस रहते हैं, कई कंपटीशन रहते हैं, उनके अंदर निराशा बहुत आती है। मैं बहुत युवकों को देखता हूं, उनके चेहरे देखता हूं, साफ झलकता है निराशा। जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा है। आप अगर स्पिरिचुअल पावर अपने में भरेंगे, फिर से हमें आध्यात्मिकता के द्वारा देव संस्कृति की स्थापना करनी है। यह आध्यात्मिक शक्ति, ये राजयोग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपने अंदर निराशा न भरें, कुछ चीजें स्वीकार कर लें। देखिए क्या आपको स्वीकार करना है जीवन में। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुनने के लिए तैयार रहना होगा। सुनना, समझ गए ना, उल्टी सुलटी बातें सुनना। सभी लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपको, अनेक लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, अनेक लोग आपकी लेग पुलिंग भी कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या द्वेष भी रख सकते हैं, लेकिन सदा आगे वही बढ़ता है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। इसलिए जीवन में सभी जितने भी चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ते हैं उन सब को देखते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है। मैं एक सुंदर बात और आपको कहना चाहता हूं, ये जो संकल्पों की और शक्तियों की बात है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम जो कुछ सोचते हैं उसमें क्रिएटिव एनर्जी है, ध्यान देंगे इस बात पर आप। जो कुछ हम सोचते हैं हमारे विचार चारों ओर तरंगों के रूप में फैलते हैं। तरंगें आपने देखी होंगी सबने, पानी के तालाब में एक पत्थर फेंक दो तरंगे फैलती है ना, उन्हें तरंगे कहते हैं। सूरज से किरणें निकलती हैं, लाइट आती है, गर्मी आती है, इन्हें किरणें कहते हैं। हमारा मन जो सोचता है ये भी तरंगों के रूप में फैलता रहता है, इन्हें वाइब्रेशंस कहते हैं। तो हमसे ये तरंगे फैलती हैं, हमारी तरंगे प्रकृति से मिलकर बहुत कुछ निर्माण करती हैं। इसलिए विद अटेंशन सुन लें, जो विचार हम बार बार करते हैं उसका हम आह्वान करते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। सभी युवक अच्छी तरह सुन लें, जो विचार हम बार बार करते हैं उसका मानो हम आह्वान करते हैं। मैं आपको मोटे से उदाहरण दूं जो आजकल की दुनिया में मैंने देखा। एक माता कैंसर की बीमारियों के बारे में सुनकर बार बार ये सोचती थी, कहीं मुझे कैंसर न हो जाए, कहीं मुझे कैंसर न हो जाए। क्या हुआ? उसको कैंसर हो गया। चिकनगुनिया फैला पिछले साल बहुत ज्यादा, लोगों ने कहा मुख पर पट्टी बांध लो, हाथ ऐसे धो, ऐसे ना बात करो, ऐसे बैठो। हमने अपने यहां सबको नीचे भी तैयार किया, जहां बहुत भाई बहने आते हैं, कि संकल्प करो हमें चिकनगुनिया होगा ही नहीं, विद कॉन्फिडेंस संकल्प कर दो। किसी को नहीं हुआ। तो ध्यान दें, आप अपने बच्चों को भी सिखा देना, बार बार नेगेटिव संकल्प नहीं करेंगे, चाहे एग्जाम के बारे में हो, चाहे एग्जाम के रिजल्ट के बारे में हो, चाहे किसी हायर कंपटीशन के बारे में हो, बार बार कमजोर विचार नहीं करेंगे, नहीं तो हम उसको क्रिएट करते हैं। सभी सोच लें, अच्छी तरह अपने पर नजर डालें, हम जीवन में कहां कहां गलत सोचते हैं देख लो आप। हर मनुष्य गलत सोचता है, कुछ काम करने चल रहे, पता नहीं सफलता होगी या नहीं, किसी से मिलने जा रहे, पता नहीं वो व्यक्ति ठीक से मिलेगा या नहीं, रेस्पॉन्स अच्छा देगा या नहीं, बच्चे एग्जाम में जा रहे, पता नहीं पेपर आउट ऑफ कोर्स ना जाए, रिजल्ट पता नहीं हार्ड मार्किंग न हो जाए, पहले से ही उल्टा संकल्प शुरू कर देते हैं। तो जैसा संकल्प करते हैं वही रिजल्ट दिखता है। मैंने तो बहुत अच्छे प्रयोग स्टूडेंट से ये भी कराए, एक बड़ा प्रयोग जस्ट इशारे में आपको सुना रहा हूं, आपको समझ में आए कि हमारे मन की शक्तियां कितनी बड़ी हैं। बहुत हायर कंपटीशन में मैंने कराया, आईएएस की परीक्षा में। क्या प्रयोग था कि याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, वो मेरे साथ है, जो क्वेश्चन मैं तैयार करूंगी वही पेपर में आएंगे। एक लड़की कर रही थी आईएएस चंडीगढ़ की, उसको मैंने ये सिखाया, वो मेरी बात सुन के हंसने लगी कि भला ऐसे कैसे होता है, ऐसे हो जाए तो सारा काम अपने हाथ में ना आ जाए। मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम करके तो देखो क्या होता है। एक हफ्ता बाकी था पहले पेपर में, उसको बहुत देर में कॉन्फिडेंस आया, लेकिन उसने फिर चालू किया। और जब पहला पेपर देने गई सवेरे 6 बजे, फिर मुझे फोन किया कि मुझे डर लग रहा है बहुत, पता नहीं क्या क्या आएगा, क्योंकि 400 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ, बहुत फास्ट गति से करना होता है। 12 बजे जब वापस लौटी घर, तो आते ही मुझे पहला फोन किया कि चमत्कार हो गया, जो क्वेश्चंस मैंने तैयार किए थे सारे वही आए हैं। लास्ट पेपर का उसको इतना सुंदर अनुभव था, जब 6 बजे जा रही थी तो मुझे फोन किया कि इस ये पेपर 26 बुक्स से आना है और मेरी केवल 15 तैयार हैं, अब तो गया। मैंने उसको फिर कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं, अब फिर संकल्प शुरू करो। और फिर 12 बजे उसका फोन आया कि सारे क्वेश्चंस 15 किताबों से ही आए, 16वीं से भी नहीं आया। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। देखो, पेपर लिखने वाले ने तो मान लो 3 मास पहले पेपर तैयार कर दिया। अब स्टूडेंट जो यहां तैयार कर रहा है क्वेश्चंस, और वो इस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है, तो जो क्वेश्चंस उसने लिखे थे उस पर ही अटेंशन जाएगा कि ये पढ़ो, ये तैयार करो, ये करो। वो विवश करेगी हमें अपनी आंतरिक शक्तियां कि ये करो। तो ध्यान देंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम कोई भी कमजोर संकल्प बार बार न करें। हम वही संकल्प उठने से ही शुरू कर दो जो आप जीवन में चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं स्पिरिचुअल पावर का। मुझे महाराष्ट्र के एक युवक का फोन आया कि कल एक नौकरी के लिए इंटरव्यू है, सीट केवल एक है, लगभग 20 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, पैसे भी दिए हुए कईयों ने, कईयों की एमपीज की सिफारिश भी लगी हुई है, सीट केवल एक है, मुझे मिल सकती है। मैंने उसको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखाई और कॉन्फिडेंस दिलाया कि विद फुल कॉन्फिडेंस आप ये प्रैक्टिस करो, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मेरा सिलेक्शन होगा ही, होना चाहिए नहीं, हे प्रभु सेलेक्ट करा देना, नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा ही। मैंने कहा उसको, अब आपके पास जितने भी घंटे हैं 18-20, बार बार इसको याद करना। और रिजल्ट वही हुआ, उसका ही सिलेक्शन हुआ, बाकी सबके पैसे भी लौटा दिए गए, सबको वापस कर दिया गया। तो हमारे पास ये स्पिरिचुअल पावर है, अध्यात्म शक्ति। हमारी संस्कृति अध्यात्म पर ही आधारित थी। आज लोग सुनाते हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, कि अब से 80 साल पहले हमारे देश में पैसा कम था, ब्रिटिश राज था, बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आपस में प्यार बहुत था, परिवारों में शांति बहुत थी, अपनापन बहुत था, सम्मान बहुत था, अतिथि देवो भव माना जाता था। और अब पैसा बहुत बढ़ गया, एजुकेशन बहुत बढ़ गई, मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गई, बिजनेस इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई, सब सुख सुविधाएं सबके पास आ गई, घरों में आ गई ना। पहले माताएं उठते ही चक्की चलाया करती थी, पानी भी दूर से लाना पड़ता था, अंगीठी जलानी पड़ती थी भोजन बनाने के लिए, अब सब काम बटन दबाने से होता है, लेकिन सुख शांति बहुत दूर चली गई। बहुत एजुकेशन बढ़ गई, मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया, लेकिन जिसे देखो परेशान नजर आता है कहीं ना कहीं। क्या मिस हुआ? आध्यात्मिक शक्ति, आपसी निस्वार्थ प्रेम, अपनापन। इसलिए आप यहां आए हैं, फिर से आपको ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं, और मैं समझता हूं फिर से आप सभी अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचान रहे हैं। सबके अंदर देवत्व है, देख लें। आप कहीं झूठ बोल दे जरा सा तो क्या होता है? शांति रहती है, उसके बाद मन खाने लगता है, क्या करूं, झूठ बोला गया। क्योंकि हमारे देव संस्कार जो हमारे अंदर हैं वो काम करने लगते हैं। एक हंसी की कहानी और सुना देता हूं लास्ट में, फिर हम योग करेंगे और दादी जी आएंगी। हंसी की छोटी सी कहानी है, सच्ची कहानी। एक माता ने मुझे रात को फोन किया, 10:30 बजे। कहा मुझे नींद नहीं आ रही है भाई जी, क्या करूं? मैंने कहा तो मैं क्या करूं इतनी दूर तुम्हारी नींद के लिए। मैंने फिर भी पूछा क्या गलती हो गई बताओ, कुछ गलती हो गई, कुछ विचार चल रहे हैं? कहा मेरे से आज गलती हो गई, माताएं जो गलती कर देती हैं वो उसने कर दी। कहा मैं सब्जी लेने गई थी, सब्जी वाला महंगी दे रहा था, तो मैंने चुपचाप क्या किया, जैसे उसने पीछे को देखा उसके 4 बैंगन भी उठा के थैली में रख लिए। घर आ गई, सोचा बैंगन बड़े अच्छे हैं, ताजे ताजे छोटे छोटे, पहले बैंगन की सब्जी बना देती हूं। बैंगन उठाया, चाकू लिया, हाँ, इसके बाद मेरे हाथ कांपने लगे और मन में विचार उठने लगा, तुम चोरी के बैंगन बच्चों को खिलाओगी? चाकू छूटा, बहुत चिंतन हो गया, तुमने चोरी कर ली, 5-7 रुपए के बैंगन उठा लाई। मैंने बैंगन रख दिए, दूसरी सब्जी बनाई, खाना पीना पूरा हो गया। अब मैं जब सोने आई हूं फिर वही चालू हो गया। कहा क्या करूं नींद नहीं आ रही, तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो होना, सवेरे जल्दी जाना और उसकी बैंगन वापस कराना कि भाई भूल से तुम्हारे बैंगन भी आ गए थे, अपने वापस ले लो। सवेरे 6 बजे ही गई, बैंगन दे के आई और आते ही मुझे फोन किया, भाई जी मुझे बहुत शांति मिल रही है। मैंने कहा तुमने अपनी शांति 5 रुपए में ही बेच डाली थी, देखो शांति कितनी महंगी और 5 रुपए में बेच दी। ऐसे बहुत लोग बेच रहे हैं खुशी और शांति को सस्ते में, तो हमें सस्ते में नहीं बेचना है। ये सब इसलिए होता है कि हमारे अंदर देवत्व है, देवत्व है, वो हमें करने नहीं देता कुछ गलती, और हम करते हैं उसको दबा देते हैं कि तुम बैठो, और कुछ गलती करते हैं फिर टेंशन होती है, अशांति होती है, अनिद्रा होती है, ये सारे रोग डॉक्टर साहब से जिनकी आप चर्चा कर रहे थे ये सब इसीलिए तो हैं। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, डॉक्टर की बात याद करते ही, भाई दादी आ जाए तो मुझे मैसेज देना। एक बहुत अच्छी वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, आपके काम आएगी ये बात, वैज्ञानिकों ने, ये रशिया के वैज्ञानिकों की रिसर्च है। 2 गिलास पानी लिया, सेम वॉटर इन 2 ग्लासेज, एक पर कागज चिपका कर लिख दिया नफरत, हेट अपनी भाषा में, दूसरे पर लिख दिया लव, प्रेम। दोनों गिलास पानी सारी रात ढककर एक कमरे में रख दिया। ध्यान देंगे, बहुत सुंदर चीज है, जब से मैंने ये जाना मैंने बहुत चीजें डेवलप कर दी, स्पिरिचुअल पावर से रोगों को कैसे ठीक किया जाए। सवेरे जब दोनों गिलास के पानी को चेक किया, उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं चेक करने के, तो क्या पाया, जिस गिलास पर घृणा लिखा था उस गिलास में बहुत डर्टी तरंगे, काली काली तरंगे पैदा हो गई थी जो उन्हें दिखती थी उनके कैमरे से, और जिस गिलास पर लव लिखा था उस गिलास में गोल्डन, बहुत सुख देने वाली तरंगे पैदा हो गई थी। ये रिसर्च थी रशिया के वैज्ञानिकों की, कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले। मैंने इसकी VCD भी देखी, तो देखते ही पहले तो मेरा विचार हुआ कि देखो घृणा लिखने से पानी में गंदी तरंगे आ गई, लिखने से केवल, और जिसके मन में घृणा रहती हो उसका क्या हाल होगा, सोचने की बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानने योग्य बात है कि हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, हमारे हर विचार का इफेक्ट उस पानी पर पड़ता है। इसलिए अगर हमारे मन में ये विकार हैं, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, टेंशन, अशांति, तो हमें बीमार होना ही है। और जो अपनी बीमारियों को समाप्त करना चाहते हैं उनको अपने मन को खुशी और प्रेम से भर देना चाहिए। सभी बीमारियों की दवाई खुशी और प्रेम। पसंद है? जिसके मन में खुशी और प्रेम की तरंगे उठती हैं, वो व्यक्ति बीमार भी नहीं होगा, और अगर बीमार हो गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस व्यक्ति के मन में खुशी और प्रेम है, उसको इस संसार में कुछ भी पाना कठिन नहीं रहेगा। इसलिए जिन कलाओं के फील्ड में आप अग्रसर हैं, उमंग से आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल पावर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हाय दादी, हाँ, स्पिरिचुअल पावर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। बहुत हिम्मत उत्साह के साथ आप आगे बढ़ें, शिव बाबा से जुड़ जाएंगे तो उसकी मदद भी आपके साथ रहेगी। अभी संकल्प के साथ हम समाप्त करेंगे क्लास को। हम भगवान के बच्चे हैं, वो प्यार का सागर है, तो हमें कैसा होना चाहिए? प्यार की भरपूर गंगा। हमारा पिता प्यार का सागर है, हमें भी प्यार से भरपूर होना चाहिए। हमारा परमपिता दाता है, हमें भी देने वाला होना चाहिए। हमारा परमपिता शांति का सागर है, हमें भी शांत होना चाहिए। ये चिंतन आप सवेरे उठते ही करेंगे, मुझे विश्वास है आप अपने फील्ड में संपूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और सभी ऐसा अभ्यास करेंगे कि ऊपर से शांति और प्रेम की किरणें, हमारे परमपिता से शांति और प्रेम की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे एक बहुत सुंदर फाउंटेन मुझ पर उतर रहा है।